नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने रक्सौल हल्दिया सिक्स लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मार्ग रेखा को दी स्वीकृति। मोतिहारी, शिवहर, दरभंगा, जमुई और बांका समेत प्रदेश के 12 जिलों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में अब बिहार के मूल निवासी ही लिपिक होंगे। निगरानी की टीम ने मधुबनी के रहिका प्रखंड के अंचल अधिकारी अभय कुमार और नाजिर आदित्य कुमार ठाकुर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। और नेपाल तथा पड़ोसी राज्यों में हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा, गंडक, कोसी और बागमती समेत अन्य नदियों के जलस्तर में तेजी से हो रही है बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने रक्सौल हल्दिया सिक्स लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मार्ग रेखा को स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की मंजूरी के बाद ये एक्सप्रेसवे निर्माण से प्रदेश के 12 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। यह एक्सप्रेसवे मोतिहारी, शिवहर, दरभंगा, जमुई और बांका समेत प्रदेश के 12 जिलों से गुजरेगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया है कि इस सड़क की लंबाई 585 किलोमीटर से अधिक है। इसके निर्माण पर 35,817 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण से भारत नेपाल के साथ ही बिहार का झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच संपर्क सुगम होगा और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान जारी है। यह अभियान 26 जुलाई तक चलेगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 1 अगस्त को होगा। इस सूची पर 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावे और आपत्ति दर्ज करवाए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को होगा। इस अभियान का उद्देश्य त्रुटिहीन मतदाता सूची बनाना है। इधर निर्वाचन आयोग ने कहा है कि गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भरा जा सकता है। लोग आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in और ECI नेट ऐप से फॉर्म डाउनलोड कर स्वप्रमाणित दस्तावेज के साथ अपलोड कर सकते हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े कर्मियों के तबादले पर रोक लगा दी है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। इधर प्रदेश के 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने बूथ लेवल एजेंट BLA की संख्या बढ़ाई है। इन दलों ने 17,945 नए BLA की नियुक्ति की है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य में चल रहे विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण के खिलाफ महागठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने कल नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। इस समूह में कांग्रेस, राजद, माकपा, भाकपा, सपा सहित अन्य सहयोगी दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि मुलाकात के दौरान चुनाव आयुक्त से इस पुनरीक्षण कार्य को रोकने की मांग की गई है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी जिलाधिकारी 9 और 10 जुलाई को अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में बूथ पुनर्गठन और मतदाता सूची के सत्यापन को लेकर विशेष चर्चा होगी। निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई है। आयोग ने कहा है कि चुनाव की तारीखों से जुड़ी खबरें पूरी तरह से भ्रामक और असत्य हैं। आयोग के अनुसार आधिकारिक घोषणा के बिना किसी भी तारीख या चरणों की जानकारी का प्रचार करना गैर कानूनी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने लोगों से आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करने और संदिग्ध सूचनाओं को साझा नहीं करने की अपील की है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से आयोजित होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस संबंध में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर 13 और 14 अगस्त को संसद की बैठक नहीं होगी। प्रदेश के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में अब बिहार के मूल निवासी ही लिपिक होंगे। शिक्षा विभाग ने लिपिकों की नियुक्ति के लिए बिहार राज्य विद्यालय लिपिक संवर्ग के गठन की नियमावली अधिसूचित कर दी है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि सीधी भर्ती के लिए देश के वे नागरिक पात्र माने जाएंगे जो बिहार के मूल निवासी होंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों में लिपिक के लिए 7,593 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की प्रोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि में कटौती कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि वेतन स्तर 4-5 में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा अवधि में 2 साल, वेतन स्तर 5-6 के लिए 3 साल, जबकि वेतन स्तर 6-7 के लिए 1 साल की कमी की गई है। विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में हुए विस्फोट की घटना में बिहार के मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। तेलंगाना सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार को सूचना दी है। इधर इस विस्फोट में बिहार के श्रमिकों की मृत्यु और घायल होने की घटना को लेकर बिहार सरकार ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। ये टीम घटनास्थल पर जाकर विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी। प्रदेश के सभी जिलों में वर्मी कंपोस्ट और बायोगैस इकाई की स्थापना की जाएगी। इसके लिए किसानों को 75 घन फीट क्षमता के पक्के वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना पर लागत मूल्य का 50% या अधिकतम 5,000 रूपए का अनुदान दिया जाएगा। किसान और पशुपालकों को अधिकतम 3 इकाइयों का अनुदान मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। निगरानी विभाग की टीम ने मधुबनी के रहिका प्रखंड के अंचलाधिकारी अभय कुमार और नाजिर आदित्य कुमार ठाकुर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। निगरानी के पुलिस उपाधीक्षक राजन प्रसाद सिंह ने बताया कि गिरफ्तार सीओ द्वारा शिकायतकर्ता से जमीन रजिस्ट्री से रोक हटाने की रिपोर्ट निबंधन कार्यालय भेजने के एवज में 1,00,000 रूपये की मांग की गई थी।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा मधुबनी स्थित आरके कॉलेज के पास जो मंदिर है वहां पर परिवादी को अभियुक्त आदित्य कुमार के द्वारा फोन करके बुलाया गया कि वहां पे पहुंचिए। पहुंचने के बाद जो है उन्होंने अपना पैसा लिया तो परिवादी ने उनसे कहा कि सीओ साहब का भी पैसा है, लेके आए हैं। और सत्यापन करता अंचल कार्यालय स्थित सीओ के आवास पे गए, वहां सीओ ने जो है उनसे 17,000 रूपये की राशि परिवादी से ली और उस क्रम में सीओ को जो है जो निगरानी की टीम जो वहां जाल बिछाए हुए थे उन्होंने उनको पकड़ा।
दोनों गिरफ्तार कर्मचारियों को आज मुजफ्फरपुर निगरानी कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज कैमूर, रोहतास, गया, कटिहार और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है।
दिनांक 3 जुलाई 2025 राज्य के दक्षिण एवं उत्तर पूर्व भाग के अनेक स्थानों पर एवं शेष भागों के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन एवं वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के कैमूर, रोहतास, गया, कटिहार और किशनगंज जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। रोहतास जिले के तिलौथू में सबसे अधिक 48.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी। नेपाल और पड़ोसी राज्यों में हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा, गंडक, कोसी और बागमती समेत अन्य नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में चेतावनी के स्तर को पार कर गया है। वहीं कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही है। गंडक नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। गंगा नदी के जलस्तर में पटना के गांधी घाट में 30 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों की समस्याओं के समाधान के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। राजभवन की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार इस कमेटी में जेपी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी, पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विवेकानंद सिंह और पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह शामिल हैं। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौंगथू ने बताया कि यह कमेटी विश्वविद्यालयों की समस्याओं का आकलन कर उनके निराकरण के लिए 15 दिनों के भीतर शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी। श्री अमरनाथ जी की 38 दिनों की वार्षिक यात्रा आज सुबह दोनों मार्गों दक्षिण कश्मीर के पहलगाम और मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से शुरू हो गई है। प्रशासन ने आज तड़के यात्रियों को पवित्र गुफा के लिए दोनों मार्गों से जाने की अनुमति दी। आईपीएस अधिकारी बाबूराम को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी बनाया गया है। बाबूराम बिहार कैडर के 2009 बैच के अधिकारी हैं। विशेष कार्यबल एसटीएफ की टीम ने लखीसराय जिले के चानन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोबरदहा कोड़ासी में वर्षों से फरार चल रही वांछित महिला नक्सली रूबी देवी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर अन्य सहयोगियों की भी जानकारी जुटा रही है। कटिहार में लॉरेंस विश्नोई के नाम पर अपराधियों के द्वारा एक व्यवसायी से रंगदारी की मांग करने के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण के जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने भ्रष्टाचार के आरोप में जिला परिवहन कार्यालय के 3 सरकारी पदाधिकारी और कर्मियों तथा 4 दलालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिले के बेतिया समाहरणालय सभागार में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य निरुपम चाकमा की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के समग्र विकास के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान अखबार की विशेष खबर है, राज्य सरकार कर्मियों और पेंशनधारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देगी। दैनिक जागरण ने मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, विपक्षी दलों ने कहा मतदाता सूची के सत्यापन का जो काम 22 वर्षों से नहीं हुआ अब क्यों। प्रभात खबर ने इसी खबर को अपनी लीड बनाते हुए चुनाव आयोग के हवाले से लिखा है, पारदर्शी और निष्पक्ष रहेगी पूरी प्रक्रिया। दैनिक भास्कर की प्रमुख खबर है, आरकॉम का 31,580 करोड़ रूपये का लोन फ्रॉड घोषित। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने रक्सौल हल्दिया 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मार्ग रेखा को दी स्वीकृति। मोतिहारी, शिवहर, दरभंगा, जमुई और बांका समेत प्रदेश के 12 जिलों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में अब बिहार के मूल निवासी ही लिपिक होंगे। निगरानी की टीम ने मधुबनी के रहिका प्रखंड के अंचलाधिकारी अभय कुमार और नाजिर आदित्य कुमार ठाकुर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। और नेपाल तथा पड़ोसी राज्यों में हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा, गंडक, कोसी और बागमती समेत अन्य नदियों के जलस्तर में तेजी से हो रही है बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।